शांति। ओम शांति, ओम शांति। मधुबन के पावन घर में वर्ष भर भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक बाप दादा से मिलन की सीजन चलती है, जिस सीजन में बाबा के पवित्र योगी भाई बहने बच्चे अपनी स्व उन्नति के लिए, प्रभु मिलन के लिए मधुबन आते हैं। 2018-2019 की बाप दादा मिलन की सीजन का विधिवत शुभारंभ भारतीय भाई बहनों का इस ग्रुप से हो रहा है। पहला टर्न 12 अक्टूबर डबल विदेशी भाई बहनों का था और कुछ भारत के 2-3 हजार भाई बहने आए थे, लेकिन इस टर्न से लेकर फिर बड़े बड़े ग्रुप्स आने शुरू हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारा ये मिलन कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशेष है। इसी का यादगार भक्ति में भी कुंभ मेले लगते हैं। सारे विश्व में कुंभ मेले ऐसे धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। ये इसी संगम युग के मिलन की यादगार है। ईश्वरीय परिवार मैक्सिमम संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा मिलन के सीजन में ही इकट्ठे होते हैं। वो तो यादगार है नदियों के मिलन का, त्रिवेणी संगम का, या सागर और नदियों के गंगा सागर मेले, पर सचमुच सत्य अर्थ में ज्ञान सागर और हम सभी ज्ञान नदियों का मिलन संगम युग में होता है, अभी होता है। मधुबन सागर का कंठा है और हम सभी नदियां बाबा से मिलने के लिए आते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। और हम सब बाबा के बच्चे इस सत्य को जानते हैं कि 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में केवल इस संगम में कलियुग अंत और सतयुग आदि के संगम में बाबा आते हैं। हर दो युग के बीच संगम है, पर वो उतरती कला के संगम है। ये कलियुग अंत और सतयुग आदि का जो संधि काल संगम युग है, जब स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। भक्ति है भावना, श्रद्धा, मान्यता। सत्य उसमें हम नहीं जानते हैं, पर श्रद्धा और भावना से भगवान को मानते हैं और पाने के लिए, दर्शन के लिए जिस जिसने जो सिखाया वो सब कुछ भक्ति में करते रहते हैं। कभी साक्षी होकर भक्तों की भावना को आप देखिए, उनके ऊपर भी बड़ा मान होता है कि सिर्फ भावना, श्रद्धा और मान्यता के आधार पर भी कितना भगवान को याद करते हैं, कितना समय धन खर्च करते हैं। वहां तो कोई साक्षात भगवान नहीं आते हैं, वहां कोई डायरेक्ट भगवान उनको पढ़ाते नहीं है। पर जैसे परसों बाबा ने कहा कि आत्मा इतनी पिताव्रता है कि दुख में भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, तो निराकार ही बुद्धि में आता है। बल मानते हैं श्री राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश को, देवियों को, पर हे भगवान कहकर जब पुकारते हैं तो वो ही बेहद अनंत परम ही उनकी बुद्धि में आता है। इन भक्तों की भावना, श्रद्धा, लगन, निष्ठा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें तो साक्षात बाबा मिले हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, उनका सत्य वाहन माध्यम ब्रह्मा के द्वारा रचे इस ज्ञान यज्ञ में हम आते हैं और उनके मुख से उच्चारे हुए सत्य महावाक्य रोज हम सुनते हैं। ये सब हमने अपने विवेक से परख लिया है, उसके बाद इस जीवन को आरंभ किया है। अलौकिक जन्म हुआ और हम सच्चे अर्थ में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण बने हैं। परख तो पहले हो चुकी है, उसके बाद हमने निश्चय किया और अलौकिक जन्म लिया। तो इस अलौकिक ज्ञानी योगी जन्म में दिन प्रतिदिन हमारी लगन बढ़ती जानी चाहिए। हमारी लगन बढ़ती जाए, नया नया कोई अभ्यास करते हैं तो मुश्किल लगता है, भूलें होती है, पर जब सीख जाते हैं फिर तो नेचुरल हो जाता है, फिर मेहनत नहीं रहती, बहुत सहज हो जाता है और उसमें आनंद आता है। तो हम बाबा के बच्चों को भी बाबा को परखने और परख कर निश्चय करने के एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल तो हो ही गए हैं, तो अभ्यास करते करते अब ये योगी पवित्र जीवन हमें नेचुरल हमारा बन जाना चाहिए। जैसे शरीर की दिनचर्या, रोज नहाना, रोज खाना, रोज नींद करना नेचुरल है, वो करने में हमें कोई मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता है, प्रश्न नहीं उठता है कि कब तक खाना है, कब तक नहाना है, ये प्रश्न कभी नहीं होता है। बहुत नेचुरल रूप से रोज हम ये करते हैं। अब अगर ये सत्य हमने ठोस रूप से स्वीकार कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व केवल शरीर से नहीं, शरीर और आत्मा मिलकर है, तो अब कम से कम एक साल वाले भाई बहने यहां है और साथ साथ अधिक वर्षों से अभ्यास करने वाले बाबा के हम सभी बच्चे हैं। तो अपने आप में देखिए कि हमारा अब रोज अमृत वेले उठना, रोज मुरली क्लास में आना, रोज जो बाबा ने कहा वो कर्म में अभ्यास करना, अब ये सब पुरुषार्थ हमारा नेचुरल हो जाना चाहिए। हमें उसमें आलस्य ना आवे, अलबेलापन ना हो, बल्कि वो हमारा दैनिक जीवन है, प्रतिदिन की ये हमारी आवश्यकता है, इतना स्वाभाविक रूप से बन जाना चाहिए। और ये अभ्यास करते करते दूसरा रिजल्ट हमें ये अनुभव में आना चाहिए कि आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि से सेल्फ डिपेंडेंट हो जानी चाहिए। जैसे बच्चा छोटा है तो माँ बाप खिलाते हैं, पिलाते हैं, ध्यान देते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, पर धीरे 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 वो बच्चा पांव पर हो जाता है, फिर अपने आप अपनी दिनचर्या चलाता है। ऐसे हम बाबा के बच्चे अपने इस आध्यात्मिक जीवन में हमारी ये आध्यात्मिकता भी स्वनिर्भर हो जानी चाहिए। तो दूसरा चेकिंग अपने आप में हमें ये करना है कि मेरी आध्यात्मिकता मेरी अपनी लगन और शक्ति से हो। मैं ये आध्यात्मिक जीवन अपनी शक्ति से जी सकती हूं या नहीं, संगठन मिले या न मिले, देश में है या विदेश में है, शहर में है या गांव में है, हमें पालना मिले या न मिले, सेंटर हो या ना हो, पर जो अलौकिकता आध्यात्मिकता जो रूहानियत हमारे जीवन में आई है वो अब अपने पांव पर हो, हमारी अपनी समझ और शक्ति पर हो, हमारे पीछे कभी किसी को मेहनत ना करनी पड़े, हम कहीं भी हो हम अपने आप में रूहानी हो, ये रिजल्ट आना चाहिए। और तीसरी बात कि शुरू में चीज मुश्किल लगती है फिर सहज हो जाती है और उसमें आनंद आता है, बल्कि और मास्टरी बढ़ती जाती है। तीसरा चेकिंग विशेष मधुबन में जब हम आते हैं तो हमें ये करनी है कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे इस याद में, पढ़ाई में, इस धारणा में, पुरुषार्थ में, सेवा में आनंद आता है। जैसे कोई चीज सीख लेते हैं तो हमें खुशी होती है ना कि ये मुझे आता है, मैं कर सकती हूं। हमने भी अगर ये सीख लिया है तो हमें इसमें आनंद आना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे मग्न और एकाग्र होते जाएंगे। तो जैसे यादगार कुंभ मेलों में जबकि वहां कोई व्यवस्था भी नहीं, न रहने की न खाने की, पर एक पावन बनने की भावना, पावन बनने की एक भावना, दुखों से छूटने का एक लक्ष्य, भगवान से मिलन और सुख पाने की इच्छा के कारण कितनी बड़ी संख्या में गांव-गांव से पढ़े लिखे सब जाते हैं। ये भी वही प्रभु मिलन का सच्चा ज्ञान कुंभ मेला है। और मेले में जो जाते हैं, एक तो आप जानते हैं, आप में से भी कई गए होंगे, कौन कौन गए हैं कुंभ मेले में, जरा हाथ ऊपर करिए। काफी भाई बहने गए हुए हैं। एक तो स्नान का महत्व होता है कि वहां जाना माना स्नान, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, है ना, जो भी वो संगम के स्थान है वहां स्नान का महत्व है। दूसरा सत्संग का महत्व है। मुझे भी बाबा ने सेवा का मौका दिया था, जो 12 साल के बाद बड़ा कुंभ मेला होता है, मुझे उसमें लगभग 1.5 मास रहने का और सेवा का मौका मिला। हर धर्म संप्रदाय के अपने अपने पंडाल लगे हुए होते हैं और हर मंडप में सत्संग चलता रहता है। तो सत्संग का महत्व होता है। और तीसरा दान पुण्य का महत्व होता है। लोग धर्म के नाम, गुरुओं के नाम, पंडित ब्राह्मण पुजारियों के नाम, धर्म के नाम पर दान पुण्य करते हैं और इस प्रकार कुंभ मेले में जाते हैं तो अपनी उन्नति और कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं। प्रैक्टिकल संगम युग में भी हम देख रहे हैं कि ये बाबा का बेहद का घर, पवित्र भूमि, तपस्या भूमि, वरदानी भूमि, जहां वर्ष भर और विशेष ये अक्टूबर से मार्च और बीच में और 3 मास भट्टियों के, माना वर्ष भर सच में जहां तपस्या के कार्यक्रम चलते हैं और वो सच्ची तपस्या। तो हम जब इस प्रभु मिलन के पावन ज्ञान कुंभ मेले में आते हैं तो हमें भी योग स्नान का लक्ष्य रखना है। घर में ये वातावरण नहीं मिलता है। सेंटरों में आप 1-2 घंटा रोज जाते हैं और वापस अपनी नौकरी धंधे पर जाने के लिए दौड़ते हैं। बाबा ने ये स्थान, कुंभ मेले का ये जो इतना बड़ा स्थान बनाया है, तो मुख्य बात योग स्नान से आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मेन लक्ष्य आत्मशुद्धि और प्रभु मिलन है। आत्मशुद्धि, इस पावन भूमि पर, इस विशाल स्थान पर जब और लौकिक जिम्मेवारियों से आप फारिग है, न नौकरी धंधे पर जाना है, न भोजन बनाना है, घर संभालना है, वहां से आप व्यवस्था करके औरों को जिम्मेवारी देकर निश्चिंत होकर यहां आते हैं, तो एक तो हमारा ये मुख्य लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे अच्छी तरह बाबा की याद में रहने का, निश्चिंत होकर, क्योंकि हम सेंटरों में सेवा के लिए जाते हैं थोड़े थोड़े दिन, हम देखते हैं, यहां भी भट्टियों में आते हैं, हम देखते हैं कि वहां निश्चिंत होकर बैठ नहीं पाते, क्योंकि लौकिक जिम्मेवारियां होती हैं। बाबा के घर में जब हम आते हैं, हम निश्चिंत होने के कारण हम डिटैच हो सकते हैं। भले आप एक घंटा बैठिए, दो घंटा बैठिए, सुबह अमृत वेला, शाम का योग, या जब भी आपको यहां दिनचर्या में एक दो तीन घंटे का समय मिलता है, पूरा समेट कर, डिटैच होकर, हर तरफ से अपने आप को समेट कर और न्यारा करके, आज भी बाबा ने स्लोगन में बताया तपस्वी की निशानी क्या है, कि वो बहुत जल्दी अपने आप को न्यारा बना सकता है, क्योंकि तभी याद का आनंद आ सकता है। मैं आपसे बातचीत करती हूं और आपका ध्यान घड़ी घड़ी कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें जाता रहे तो बातचीत का आनंद नहीं आएगा। हाँ, मैं कहूंगी भाई 5 मिनट आप शांति से बैठिए, बात कर लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। हम भी बाबा से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और घड़ी घड़ी हमारा इधर उधर आगे पीछे न सिर्फ चेहरा घूमता, लेकिन पता नहीं मन कितनी बात में जाता है। तो वो कितना भी बाबा से प्यार हो, पर बात का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप एकाग्र होके बाबा मई बन के नहीं बैठे। 5 घंटा बैठे वो नहीं, जितना भी आप बैठो पर क्वालिटी योग करना है। और वो है कि एक तो चारों तरफ से डिटैच, दूसरा बाबा मई, उससे प्यार है, उससे मिलन है, उनसे बातचीत है, तो हमारा उसी के प्रति ध्यान रहे, तब आपको बाबा से रूरिहान करने का, मन की आंख से बाबा को देखने का और मन ही मन उनके गुण गाने का, ऐसे पिता को पाने के सौभाग्य का आनंद हम ले सकते हैं। भाइयों और बहनों, अल्टीमेट हमारा योगी जीवन है, सिर्फ ज्ञानी नहीं है ना, भक्ति में भी कहा है कि भक्त आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा, और ज्ञानी तु आत्मा से योगी तु आत्मा मुझे अति प्रिय है। कल बाबा ने कहा था कि ज्ञानी तो आत्माएं मुझे अति प्रिय है, जो स्वयं निश्चय पूर्वक ज्ञान को समझती है, औरों को समझाती है। पर उससे आगे एक और स्टेप है कि मुझे योगी तो आत्मा अति प्रिय है, क्योंकि योगी मेरा ही स्वरूप है। योगी बनना माना बाबा जैसा बन जाना, टोटल निराकार बन जाना, बाबा में मगन हो जाना, जिससे मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, वहां ही अटेंशन देना, तभी वो मिलन, वो बातचीत आनंद देती है। तो मधुबन जैसा बेहद का घर, बेहद का पावन वायुमंडल, क्योंकि आखिर मधुबन बाबा का है, कोई व्यक्ति का नहीं है, भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। भल हम सेवाधारी नंबर वार है, पर ये कार्य बाबा का है, ये भूमि बाबा की है। इसलिए जब हम इस ज्ञान कुंभ मेले में आते हैं तो हमें योग स्नान करके, क्योंकि योग से आत्मा शुद्ध बनती और शुद्धि में शांति, शुद्धि में सुकून महसूस होता है, है ना। जैसे शरीर साफ होता है तो कितना फ्रेशनेस लगती है, तरोताजा हम हो जाते हैं, आधी थकान मिट जाती है। शुद्धि वो चीज है जो आत्मा को पावरफुल बना देती है। तो बाबा की याद से, योग स्नान से आत्मा शुद्ध होती। सारा दिन अनेक आत्माओं से मिलते हैं, अनेक प्रकार के कार्य हम करते हैं, कितना भी हम बाबा की याद में करें तो भी थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। जैसे सफेद सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर निकलते हैं, पर सारा दिन कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो शाम होते होते कुछ तो कपड़े मैले हो ही जाते हैं। बाहर का नहीं तो खुद का पसीना भी कपड़े को मैला करता है। औरों की बातें ना भी देखें ना भी सीखें, पर खुद के संस्कार, खुद के मन के युद्ध भी स्थिति को प्रभावित तो कर ही देते। और जब इसलिए स्नान करते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो याद से आत्मा तरोताजा होती है, क्योंकि याद से, याद में हम क्या करते हैं, डिटैच होते हैं, बुद्धि से ऊपर उठते हैं और बाबा से मिलते हैं। तो ये अभ्यास हमें प्रभावों से मुक्त करता है। दिन भर जो बातों का प्रभाव पड़ा, इसलिए क्यों बाबा कहते हैं और क्यों हमारी दादियां हमें पक्का कराती हैं कि अमृत वेला योग से दिन सफल होता है और संध्या के योग से रात सफल होती है। कम से कम हम सब भाई बहनों के जीवन में ये दो स्नान तो होने ही चाहिए, क्योंकि इससे हम बार बार सभी प्रकार के कर्म, वाइब्रेशन, संपर्क, परिस्थितियां, संबंध के प्रभाव से वापस मुक्त कर सकते हैं और फिर अपने को शुद्ध स्थिति में स्थित कर सकते हैं। इसलिए एक तो हमारा ये लक्ष्य रहे, दूसरा सत्संग। बाबा के घर में भी आप देखो निरंतर सत्संग चलता है। बाबा के सीनियर वरिष्ठ विशेष अपने चिंतन अभ्यास अनुभव से हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने, हमारी दीदियां, है ना, सभी के चिंतन के क्लासेस चलते हैं, तो वो एक ज्ञान की गहराई हमें मिलती है। और जितना ज्ञान गहरा, उतना माया के सूक्ष्म रूपों को परख सकेंगे और खत्म कर सकेंगे। ज्ञान तो खुराक है, सत्संग आत्मा की खुराक है, जो हमें सेंसिबल और शक्तिशाली बनाते, और आत्मा जो विभिन्न माया के स्वरूप हमारे सामने आते हैं, हर घड़ी नहीं आते हैं, पर कोई ना कोई बात ऐसी बनती है, फीलिंग आ जाती, मूड ऑफ हो जाता, अवस्था बिगड़ जाती, संग दोष आ जाता, गलत सीखते, है ना, ये सब जो माया के स्वरूप है, अज्ञानता और कमजोरियों के जो स्वरूप है, उससे अगर मुझे मुक्त होना है तो पढ़ाई सत्संग बहुत अच्छा होना चाहिए। बल आप दिन में एक दो जो भी क्लास करना चाहते हैं करिए, पर पूरी एकाग्रता से, और समझना है हर बात को। जितना अध्ययन अच्छा, उतनी अवस्था अच्छी बनती। हम स्वयं में शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि कौन कब तक हमें संभालेगा, सेफ करेगा। हम भाई बहनों को अपने आप में इतना विवेक, दिव्य बुद्धि विकसित करनी है कि हम उसी क्षण परख सके कि राइट है या रॉन्ग है। ये बात जो मेरे सामने आई है, चाहे ज्ञानियों के द्वारा आई है या अज्ञानियों के द्वारा आई, या स्वयं के मन से आई है, खुद के पुराने संस्कारों से तूफान या मनमत के रूप में आई है, अब हम बच्चों में इतना दिव्य बुद्धि और सद्विवेक विकसित हो जाना चाहिए, जो हम परख सके राइट है या रॉन्ग है। हम भ्रमित ना हो जाएं, संग दोष में ना आ जाएं, हम अपने आप को कितने भी बड़े संगठन के बीच हम सेफ रख सके। और ये बात मैं अभी इसलिए कह रही हूं, अब चूंकि भगवान ने भी जो पढ़ाना था वो हम बच्चों को पढ़ा दिया है, जो कहना था वो कह दिया है, तभी ड्रामा अनुसार बाबा का आना, हमें और नए आगे के डायरेक्शन देना, पढ़ाना, वो चीज क्यों नहीं है। ड्रामा अनुसार 2018 के सीजन में ये चीजें क्यों नहीं, क्योंकि पढ़ाई जो भगवान को पढ़ानी थी वो पढ़ा दी। आप समझते हैं इस बात को, समझ रहे हैं ना इस बात, और हरेक संतुष्ट है कि भगवान को जो कहना था वो हमें कह दिया है, समझा दिया है, बार बार समझा दिया है। अब हम इतने तो सेंसिबल होने चाहिए जो हम समझ सके कि बाबा ने पढ़ाई कंप्लीट कर दी है। तो अब हमारा विवेक इतना जागृत हो जाए ताकि हम खुद को संभाल सके, सुरक्षित कर सके और दूसरों को भी मदद कर सके। ये रिजल्ट हमें बाबा को देना है। अब बाप दादा और दादियों को और हमारे बड़ों को हमें निश्चिंत बनाना है कि हम बाबा आपके बच्चे, आपने हमें इतना पढ़ाया है, अब हम जागृत हैं, अब हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अब हम डायरेक्ट आपसे ले सकते हैं, मिलन कर सकते हैं। समझदार आत्मा टीचर ना आवे तो अलबेली नहीं होते। जैसी जैसी ऊंची पढ़ाई, टीचर का आना कम होता है। प्राइमरी स्कूल में हर बात में टीचर साथ होता है, सेकेंडरी में कम, हायर सेकेंडरी में और कम, कॉलेज में और कम, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में और कम, आखिर पीएचडी में खुद ही तैयारी करनी होती। तो अब हम वो स्टूडेंट हैं, कहीं ये सोच के अलबेले हो रहे हैं कि बाबा तो नहीं आएंगे, पर अब हमारी और जवाबदारी, अब हमें और अच्छा रिजल्ट बाबा को देना है और हमें यज्ञ को निश्चिंत करना है कि हम इतने मजबूत, सेंसिबल और शक्तिशाली है कि अब जो बाबा चाहते हैं वो हम सदा बन के रहेंगे, सदा। जैसे लौकिक में भी भाई माता पिता नहीं है तो बड़े भाई बहन माँ बाप समान होते हैं, अब हमें वो पार्ट प्ले कर आने वाले नए भाई बहनों को हमें वो अपने जीवन धारणा और स्वरूप से, व्यवहार से अनुभव कराना है। और अंत तक जो बाबा ने चाहा है हमसे रिजल्ट, वो प्रैक्टिकल हमें दिखाना है। ये सीजन बाप समान रिजल्ट बताने की सीजन है। अलबेले होने की नहीं है, लगन कम करने की नहीं है, मधुबन न आने की नहीं है, बल्कि अब हमें और अच्छी तरह स्थिति बनाकर आत्माओं को अनुभव कराने का अब ये सीजन। अगर यादगार शास्त्र में भी बताया है ना कि अर्जुन जब भगवान ने हाथ ऊपर कर दिए, 18वां अध्याय में आप पढ़िए, जब भगवान ने ये कह दिया कि जो मुझे तुझे कहना था वो कह दिया है, समझा दिया है, अब हे अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुमको जो चाहिए सो करो। मैंने तुमको जो बताना था, समझाना था, बता दिया है, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार तुमको जो करना है करो। जब भगवान न्यारे होने लगे तो अर्जुन जाग गया, सावधान हो गया, नष्ट मोहा बन गया और अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरा विवेक खुला है, मुझे अब स्मृति आई है आप कौन हैं और मैं कौन हूं। हे भगवान, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। वचनम तव करेष्यसि, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन कंप्लीट सरेंडर हो गया। ये गायन किसका है? किसका है? हम बच्चों का है। इस वर्ष से बाबा न्यारा हो रहा है, अब हम नष्टो मोहा बनेंगे ना, अब तो हम रिजल्ट देंगे ना बाबा को, कि अब हम जो बाबा कहेंगे वो ही करेंगे। हमारे कर्म में अंतर नहीं आना चाहिए। बाबा आकर हमें देखें न देखें या वतन से देखें, पर हमारा कर्म श्रीमत पर। जो बाबा को ये प्रॉमिस करते हैं वो हाथ ऊपर करो, अच्छी तरह हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, अब हमें ये रिजल्ट बाबा को देना है। इसलिए अब पढ़ाई अच्छी करनी है, अब सत्संग क्वालिटी करना है, गहराई से ज्ञान के हर सत्य को समझना है। क्योंकि बाबा तो है ही, है ना? भगवान ने साकार रूप में पालना दी, अव्यक्त रूप में पालना दी, तो क्या वो निराकार रूप से पालना नहीं देगा? बताइए, क्यों हम ये सोचते हैं कि बाबा नहीं आ रहे? बाबा हर आत्मा को डायरेक्ट मदद करते हैं। अब वो निराकार रूप से पालना करेगा, क्योंकि हमें भी तो स्थूल से सूक्ष्म में और निराकार स्वरूप में जाना है। इसलिए हमारी बुद्धि किसी भी कारण से अटकनी नहीं चाहिए। संगम का कोई भी दृश्य अलबेला मुझे न बनाए, क्योंकि हमें उसको समझना पड़ता है। दृश्य बदलने हैं क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा परिवर्तनशील है, और शुरू से संगम के दृश्य बदलते रहे हैं। साकार में बाबा मिले, अव्यक्त हुए, अव्यक्त में भी कितना समय दिया, वो दृश्य बदलते 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 आज ये दृश्य हमारे सामने है कि बाबा वतन से मिलेगा। अब ये दृश्य है, तो हमें संगम के हर दृश्य को समझना है, बाबा की हर बात को समझना है। हमें कहीं अटकना नहीं है, अलबेला नहीं बनना है, बल्कि और परिपक्वता का परिचय देना है कि बाबा ने जैसे दादियों को खुद अव्यक्त हुए और दादियों को जिम्मेवार बनाया, विश्व के रंगमंच पर उनको आगे किया। अब समय है हम सबको अपनी स्थिति से अपने आप को प्रत्यक्ष करना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब हम सबकी जिम्मेवारी, द्वापर युग से बाबा हमारे देवताई स्वरूप का साक्षात्कार कराते रहे और अपने प्रकाशमय स्वरूप का भी बाबा साक्षात्कार कराते रहे। अब हमें उसका रिटर्न देना है कि हम अपने भविष्य देवताई स्वरूप का साक्षात्कार अभी अपने आप से कराएं और बाबा का भी हम साक्षात्कार कराएं, क्योंकि बाबा ने हमें ऐसा बनाया है। इसलिए बाबा के बच्चे इतने सेंसिबल और निष्ठा सिंसियर, बताया ना मैंने कि भक्त आधा कल्प तक अगर भक्ति कर सकते हैं बिना भगवान के आए, अपनी भावना और श्रद्धा से भगवान से बंधे रह सकते हैं और मदद का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या हम बच्चे नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो बाबा डायरेक्ट है। ये बाबा के कार्य के लिए हम निमित्त बने हुए हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। हमारी हर तकलीफ में, हर बात में बाबा हमारे साथ है, ये निश्चय बना रहे। ये नहीं कि मेरी मुसीबत दूर नहीं हो रही है, बाबा मदद कर रहा है या नहीं, आपका काम है अचल रहना। जो भगवान ने कहा है उस स्थिति में रहना, अपने आप समय आएगा, हिसाब किताब आपके चुकतू होंगे और अनेक गुना बाबा की मदद का अनुभव हम करेंगे, कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, बीमारियां ऐसी किसी को लग रही है, तो सोचते हैं कि बाबा के बने तो भी कितना भारी हिसाब है बीमारियों का। कईयों को आर्थिक मुसीबतें हैं, नौकरी धंधों में मंदी आती है तो टेंशन फील करते हैं, चिंता में बाबा के बच्चे। कई पारिवारिक संबंधों में स्वभाव संस्कार ऐसे देख रहे हैं कि आज संबंधों में वो प्यार, सुख, साथ, सहयोग नहीं है, तो कई अंदर अंदर घबराते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, पर हमें जरा भी हिम्मत नहीं हारनी। हमें चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो विनाश की बातें बाबा ने बताई हैं, वो घबराने के लिए नहीं बताई है। बाबा ने हमें पहले से सावधान किया है, हमें और तैयार होने के लिए बाबा ने कितनी बार विनाश की बातें कही। कई ये सोचते हैं कि बाबा कहते हैं और विनाश तो हुआ नहीं, पर बाबा ने बार बार विनाश की बातें कहकर, अंतिम समय की बातें कहकर, अंत की परिस्थितियों की बातें कहकर हमें बहुत लंबे समय से तैयार करने का पुरुषार्थ करा है। घबराना नहीं है, बाबा ने इसलिए हमें तैयार किया ताकि सचमुच परिस्थिति सामने आवे तो डरे नहीं, घबराए नहीं, पर हम बाबा से कंबाइंड स्वरूप में रहे तो न व्यक्ति वार करेगी न परिस्थिति वार करेगी, लेकिन आत्मा सेकंड में उड़ जाएगी। इसलिए अब तक जो बातें पार की वो पढ़ाई में आने वाली बातों को पार किया, अब उस पढ़ाई का प्रैक्टिकल पेपर, अब ये अंत की परिस्थितियां। अभियंत की परिस्थितियां है ना, पढ़ाई में आने वाली तकलीफें, वो पेपर हम सब पार कर रहे हैं, जो 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल से जो भाई बहने ज्ञान में हैं, हर किसी के सामने बातें आती है। शरीर की आयु ज्यादा हो गई, बीमारियां, सब बातें आ रही, और जो समय अनुसार प्राकृतिक आपदाएं, हलचल, ऊपर नीचाई हर क्षेत्र में, और लास्ट लास्ट की आत्माएं जो हमारे घरों में संबंधों में आ रही है, जिनमें मूल्य गुण कम है, शक्तियां कम है, ये सारी चीजें बाबा ने बहुत पहले से बता 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 करके हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार किया है। ऐसा नहीं है बाबा ने कहा और हुआ नहीं, बाबा का कहना कभी मिथ्या नहीं होता है। बाबा ने इसलिए कहा ताकि हम तैयार हो जाएं, मानसिक रूप से तैयार हो जाए, आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाए। और अब प्रैक्टिकल में बातें आएगी, हमें रिजल्ट देना है कि हमने संगम भर क्या पढ़ा, क्या श्रीमत पर चला और अपने आप में क्या शक्ति भरी, वो रिजल्ट अब हमें देने। इसलिए वो ही सदा साथ रहता है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ऐसी बात आई, कोई मेरे पास नहीं था, पर बाबा तो साथ है ही है ना। उसकी उपस्थिति का महत्व समझना है, न कि ये बातें माइंड करनी है कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। हमें इस अनुभूति में रहना है कि बाबा मदद करने वाला है, बाबा मदद करने वाला है। मैं कई बार माताओं के, भाई बहनों के मुख से सुनती हूँ तो मुझे वंडर लगता है। कई कहते हैं बस मेरा तो कोई नहीं है, बस एक बाबा है। वो दुखी होके बोलते, दुखी होके बोलते, रोते रोते बोलते। अरे यही तो खुशी की बात है कि बाबा हमारे साथ है, जो किसी के भी द्वारा कभी भी हमें मदद कर सकता है। देहधारी की तो लिमिट हो सकती है कि वो साथ होंगे तो मदद करेंगे, जिस मोमेंट वो दूर होंगे वो क्या मदद करेंगे, पर निराकार हर समय हर स्थान किसी के भी द्वारा हमें मदद कराता है। तो हमारे लिए कभी भी ये रोने की, दुख की बात नहीं, पर निश्चिंत रहने की बात है कि बाबा मेरा है। और इस स्थिति में हम रहेंगे, हमें मदद मिलेगी ही। इसलिए मधुबन में आप आए हैं, इस कुंभ मेले में आप आए हैं, दो चीज, पूरा साल इस प्रकार की सीजन नहीं होती, पूरा साल फिर शिविर की सीजन, विंग की सीजन, बठियों की सीजन, पर प्रभु मिलन बाप दादा की सीजन सालों से इन दिनों में चल रही। तो जब आप इस विशाल प्रभु मिलन के ज्ञान कुंभ मेले में आए हैं तो इन सब बातों पर गहराई से सोचिए, समझिए, महसूस करिए और अपने आप को सही अर्थ में अशुद्धि, अपवित्रता, कमजोरियों से मुक्त तरोताजा शक्तिशाली बना करके हमें मधुबन से जाना है। बहनों और भाइयों, मधुबन बाबा का घर, ये भूमि इस अनुभूति के लिए है। हम वो जरूर पावर अपने आप में भर सकते हैं। बाबा के दिन उसी लगन से हम बाबा के आह्वान में मिलन में बैठेंगे। वैसे तो रोज हमारा पुरुषार्थ है, पर फिर भी हमें स्पेशल मौका दिया जाता है कि इस दिन हम बाबा से फिर से अच्छी तरह बैठेंगे और बाबा से बहुत अच्छी बातचीत करके अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। ओम शांति। अभी हम सब मिलकर याद में बैठेंगे, फिर दादी जी भी आएंगी, दादी भी सबसे मिलेगी, तो 2 मिनट सभी खड़े हो जाएं, अपना हाथ पांव ठीक करें, कमर ठीक करें,
ओम शांति। जो भाई बहने यहाँ आए हैं अभी और जिन्होंने सौगात नहीं लिया है, वो अभी ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, वहाँ आपको दादी जी सौगात देंगी। ओम शांति।
ओम शांति। खड़े रहें, एक अभ्यास खड़े खड़े करेंगे। जिनको तकलीफ हो वो जब चाहें बैठ जाएं। इस पावन प्रभु मिलन के महाज्ञान कुंभ मेले में योग स्नान और सत्य ज्ञान के सत्संग के साथ साथ मुझे दान भी करना है, पुण्य भी कमाना है। पहला अभ्यास। मुझे अपनी कमजोरी को बाबा के आगे स्वाहा कर देना है। मैं अपने आप को जानती हूँ। किस कमजोरी में मैं अटक गई हूँ? स्वदर्शन करिए, और वो कड़ा संस्कार पवित्र योगी ब्राह्मण बनने के बाद भी रही हुई सूक्ष्म कमजोरी अपनी कमजोरी अपने सामने लाएं और बाबा के आगे समर्पण कर दें। जो कुछ मुझ आत्मा में पुरानापन है, कलियुगीपन है, पतितपना है, शूद्रपना है, अब दिल से उससे वैराग्य है। अब मुझ ब्राह्मण आत्मा को ये कमजोरी शोभा नहीं देती है। प्यारे बाप दादा, आज इस कमजोरी को स्वाहा कर देते हैं। बैठ जाए, बाप दादा को सामने देखें, लक्ष्य पक्का करें, बाप समान बनना ही है। दूसरा पुण्य ये कमाना है कि मुझे अपने विचारों से वाइब्रेशन से मन के सूक्ष्म भाव और भावनाओं से वायुमंडल में शांति पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। मुझे घर को कार्य क्षेत्र को सेंटर को शांति कुंड तपस्या कुंड बनाना जाऊं, जहां भी रहूं, पवित्रता और तपस्या की आभा के साथ लाइट और माइट के घेरे में रहूं, ताकि विश्व के वायुमंडल में पवित्रता शांति तपस्या के वाइब्रेशंस फैले। चलता फिरता चैतन्य लाइट माइट हाउस बना सिंधी आत्माओं की संबंध संपर्क में मैं आऊं, चाहे मनुष्य आत्माएं, पशु आत्माएं, पंछी आत्माएं, लौकिक अलौकिक, ज्ञानी अज्ञानी, जाने अनजाने, जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क दर्शन मिलन हो, सुख और प्यार देना है, रूहानी प्यार अलौकिक सुख देना है, सभी आत्माओं के लिए प्यार, शुभ भावना, सम्मान देना है, बाबा ने प्यारी बाबा आपने हमें कितना सुख दिया, स्वमान जगाया, सम्मान योग्य बनाया, विश्व के हर चैतन्य अस्तित्व को मुझे सुख देना है, सम्मान देना है, यही प्यार करना है, उनकी वैल्यू करना है, कदर करना है, मुझे देना है, और मुझे स्वयं ही स्वयं में शक्ति भरना है। बाबा निरंतर दे रहा है, स्वयं को तत्वों को शक्ति शुद्धि देनी है।